नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार लोकसभा में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता ने कार्य सलाहकार समिति में ये मुद्दा उठाया था, इसलिए सरकार को इस पर विचार करना होगा और ये देखना होगा कि नियमों के अनुसार चर्चा कैसे आयोजित की जाए।
Made our position very clear.
सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था कि सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार विपक्षी दलों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए समाधान निकालने के लिए चर्चा को तैयार है।
Taking along the suggestions from all the members.
शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। श्री गांधी ने आशा व्यक्त की कि सदन में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए विपक्ष और सरकार के बीच पूर्ण सहमति होगी। उन्होंने कहा कि सरकार को शहरों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कोई योजना बनानी चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि जनगणना 2027 दो चरणों में कराई जाएगी। ये देश की 16वीं और आजादी के बाद से 8वीं जनगणना होगी। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत की जनगणना विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक और सांख्यिकीय प्रक्रिया है। इसके तहत जातिगत गणना भी कराई जाएगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये पहली डिजिटल जनगणना होगी।
ये सेंसस अपने आप में एक अनूठा सेंसस होगा। दिस विल बिकम द फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस। और सबसे बड़ी बात है कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का जो कानून बना है DPDP, उसके तहत जितने प्रोटेक्शंस और जो राइट्स सिटीजंस को दी गई है उनका ध्यान रख के सेंसस को कम्प्लीट इसका डिजिटल डिजाइन किया गया है।
जनगणना 2027 में देश की पूरी आबादी को शामिल किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत प्रत्येक घर तक जनगणना कर्मी पहुंचेंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने कोयला संपर्क नीति कोल सेतु में सुधार को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि भारत कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में रेल दुर्घटनाओं में 90% की कमी आई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज राज्यसभा में कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और रक्षा भारतीय रेल की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाएं रोकने के लिए चिन्हित ब्लैक स्पॉट और संवेदनशील खंडों में रेल कर्मियों, रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस द्वारा नियमित गश्त की जा रही है। श्री वैष्णव ने कहा कि लेवल क्रॉसिंग गेट पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए 10,000 से क्रॉसिंग गेट पर लेवल क्रॉसिंग गेट इंटरलॉकिंग सुविधा दी गई है। सरकार ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में देश में फसल उत्पादन में 44% की वृद्धि हुई है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आज राज्यसभा में एक उत्तर में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये जानकारी दी। श्री चौहान ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने और समग्र कृषि विकास को गति देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक मांग पहले हिस्से और विनियोग विधेयक 2025 पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पेश किया। इसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में सेवाओं के लिए भारत की समेकित निधि से अतिरिक्त व्यय के लिए भुगतान और विनियोजन अधिकृत किया जाएगा। इससे 1,32,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय के लिए संसद का अनुमोदन भी लिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मणिपुर के सेनापति जिले में लागू की जा रही 6 विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने जिले की 5 अन्य विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। एक जनसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत आदिवासी समुदाय, विशेषकर निजी आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं, जिनसे उनके जीवन स्तर में और सुधार आएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का आज लातूर में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एशिया कप अंडर-19 क्रिकेट के पहले मुकाबले में आज भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को 434 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक संयुक्त अरब अमीरात ने 36 ओवर में 6 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।